गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट्स जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो NCB ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर में चढ़ावे और दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया था। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।